आंसू आ जाते हैं आंखों में, वो पुण्य बंध का कारण है। जोक्स सुनते सुनते जो पेट दुख गया और आंखों से पानी निकल आया, वो पुण्य का कारण नहीं है, वो तो मनोरंजन है। तो खुशी के आंसू में दोनों प्रकार का कर्म बंध हो सकता है, लेकिन पश्चाताप के आंसू में, करुणा के आंसू में और भक्ति के आंसू में केवल शुभ भाव होते हैं। और अपने स्वार्थ के आंसू, अपने पीड़ा के आंसू में असाता का बंध होता है। तो आंसू कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। फिर विविहंग खेतु भवम, अनेक प्रकार का क्षेत्र संबंधी दुख भी वहां नरक गति में पाया जाता है। तहां भूमि पर सथ दुख इसो, बीछू सहस डसे नहीं तिसो। वहां का जो क्षेत्र है, वहां की जो धरती है, उसके स्पर्श से इतना तकलीफ होती है जैसे 1000 बिच्छू डंक मार रहे हो। हमें अनुभव नहीं है बिच्छू के डंक का, लेकिन सुना है कि बिच्छू का डंक खतरनाक होता है, बड़ी वेदना होती है। तो 1000 का तो फिर हिसाब लगा लो कितना होगा। 1 में जब इतनी वेदना होती है तो 1000 में क्या स्थिति बनती होगी। और अन्नोन्न कयम तिव्वम, और तीव्र जो एक दूसरे को दुख देते हैं वो नारक, वो 5वें प्रकार का दुख हो गया। देखो 5 प्रकार के दुख कौन से हो गए? एक असुरों के द्वारा होने वाला, दूसरा शरीर से संबंधित, तीसरा मानसिक, चौथा वहां के क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला, और 5वां आपस में किया गया तीव्र दुख। 5 प्रकार के दुख नरकों में जाकर के जीव भोगता है। नरकों में कैसे जाता है उसका भी उल्लेख ऊपर हो चुका है। अब नरक और स्वर्ग के बारे में जब चर्चा आती है तो फिर आज का विज्ञान इस बात पर प्रश्न उठाता है, कहाँ है नरक स्वर्ग। और फिर नए लोग, नई पीढ़ी के लोग और बहुत सारे जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लगता है कि ये सब बातें काल्पनिक होगी, लेकिन जिनेंद्र वर्णी जी ने साइंटिफिकली इसको सिद्ध किया है। वैज्ञानिक तौर पर जिनेंद्र वर्णी जी ने इसकी सिद्धि की है। उन्होंने एक युक्ति दी है कि साइंस के हिसाब से एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, माने हर क्रिया की तुल्य और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जिसने पुण्य कमाया है उसको पुण्य का फल मिलेगा, जिसने बुरा काम किया उसको बुरा फल मिलेगा, ये सीधा गणित है। पर मनुष्य और तिरंचों में ऐसा नहीं देखा जाता। मनुष्य को कभी दुख होता है तो कुछ क्षणों के लिए सुख भी होता है, और जानवरों में भी ये दशा होती है। बहुत दुखी है कोई जानवर लेकिन बीच में कुछ चैन की सांसें भी ले लेता है, अथवा बहुत सुखी है कोई तो भी बीच में कभी कभी दुख आ जाता है। लगातार सुख और दुख मनुष्य और तिरंचों में नहीं देखा जाता। इससे ये सिद्ध होता है कि जिसने जीवन भर पाप कमाया है उसका फल यहां तो नहीं है। आ रहा समझ में? 24 घंटे पाप कमाने वाले को यहां तो फल नहीं मिल सकता, क्योंकि पाप का फल दुख है, और यहां लगातार दुख है नहीं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सुख भी है। उसी प्रकार दुख और सुख में भी ऐसा चलता रहता है क्रम तिरंच और मनुष्यों में। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कोई और दूसरा स्थान होगा जहां निरंतर पाप कमाने वाले को दुख भोगना पड़ता हो, बस उसका नाम है नरक। और जो निरंतर अच्छे काम करना, कभी मन में भी किसी का बुरा नहीं सोचता, ऐसे पुण्यात्मा जीव को कहां फल मिलेगा बताइए। यहां मनुष्य गति में अगर आएगा तो फिर यहां सुख दुख दोनों है। तो जिसने दुख मिलने योग्य कोई कार्य ही नहीं किया उसको तो यहां मनुष्य और तिरंचों में जन्म नहीं मिलना। फिर तो फिर वो जहां जाता है बस उसी का नाम स्वर्ग है, वही देवगति है। और फिर देवगति के बारे में तो अभी बहुत से लोग स्वीकार करने लग गए हैं, बहुत से लोगों को भी विश्वास होने लग गया है कि कुछ ऐसी आत्माएं भी रहती है। यहाँ मध्य लोक से संबंधित भवनत्रिक के जो देव रहते हैं ना, उनका भी कई बार परिचय मिलता है। कई ऐसी घटना, अभी अहमदाबाद में हम पिछले साल चौमासा कर रहे थे, एक सब इंस्पेक्टर थे या डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल होंगे वो, जो भी थे, वो आए हमारे पास और फिर बोलते हैं कि किसी ने हमारे ऊपर कोई ऐसी विद्या डाली है कि बहुत परेशानी में है हम। तो हमने बोला कि आप इन बातों पर विश्वास करते हो? उनने उत्तर दिया कि बिल्कुल नहीं, पर अभी हो गया विश्वास। हमने बोला कैसे हो गया, तो बोले कि ऐसी घटनाएं हो रही है कि जो कभी कोई आदमी कर ही नहीं सकता, ऐसी घटनाएं, वो कोई दूसरी शक्ति काम कर रही, एकदम अचानक उल्लू या और कोई पक्षी आकर के हमसे ऐसे टकरा जाता है, चिबरी वगैरह, इसका क्या मतलब है? इसको महज संयोग नहीं माना जा सकता। और घर में आकर के कई चीजें ऐसे गिरती है, कई ऐसी घटनाएं होती है कि जो मतलब कभी मनुष्य कर ही नहीं सकता वो काम, तो इसलिए मानना पड़ता है कि कुछ अन्य शक्तियां भी है। तो इन बातों को सुनकर के फिर एक हमने बुक देखी, किसी फॉरेनर की बुक थी, वो डॉक्टर ब्रूस गोल्डबर्ग की लिखी हुई बुक स्पिरिट्स। तो उसमें 11,000 उसने ऐसे मामले उल्लिखित किए हैं कि वो यंत्रों की जांच से और डॉक्टरी जांच से भी कुछ समझ में नहीं आता था, फिर बाद में पता चला कि कुछ ऐसी प्रेतात्माएं होती है जो आकर के किन्हीं मनुष्यों पर हावी हो जाती है और उनको परेशान करती है। और जैन शास्त्रों के अनुसार पंडित टोडरमल जी ने भी इसका उल्लेख किया है, मोक्षमार्ग प्रकाशक उन्होंने लिखा है, तो उसमें उन्होंने कुछ दिया है वेंतरों के बारे में कि किस प्रकार वो परेशान करते हैं, खुरापात करते हैं, और कभी कभी उनकी बातें झूठी भी निकलती है, ये बात भी लिखी है उनने। तो ऐसी कई घटनाएं होती है, तो ये भी मानना पड़ता है कि भाई मनुष्य और तिरेंचों के सिवाय भी कुछ और जीव हैं देव गति से संबंधित, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो शास्त्रों में जो चार गतियों का वर्णन है उसको नकारा नहीं जा सकता, सिर्फ अंधश्रद्धा की बात नहीं है, लेकिन युक्ति से भी ये बात समझ में आती है कि नहीं, चार गतियां होनी चाहिए। बस उस चार गति में भ्रमण का नाम ही संसार है, शरीर बदलते रहना संसार है, और उसका कारण अपने भीतर का मोह है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में 12 अनुप्रेक्षाओं के अंतर्गत तीसरा प्रकरण इस समय चल रहा है, अनित्यानुप्रेक्षा अशरणानुप्रेक्षा, इन दोनों का स्वाध्याय पूर्ण करके इस समय अपन संसार अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय कर रहे हैं। संसार अनुप्रेक्षा में आचार्य कहते हैं कि एक शरीर छोड़ता है, दूसरा नया शरीर जीव ग्रहण करता है, बार बार नए नए शरीरों को छोड़ता है और पिछले शरीरों को छोड़ता है, नए नए को धारण करता है, पुराने को छोड़ता है। इस प्रकार जो अनेक शरीरों में मिथ्यात्व और कषायों से युक्त जीव का भ्रमण होता है, बस इस भ्रमण का नाम ही संसार है। संसार जगत को नहीं कहते, संसार तीन लोक को नहीं कहा जाता, संसार एक जीव की भटकन का नाम है। पाप उदय से नरक में जाता है, बहुत दुख सहन करता है, 5 प्रकार के दुख जो अन्य दुखों के साथ उपमेय नहीं है, माने जिनको दूसरे दुखों की उपमा नहीं दी जा सकती कि वो इतना दुखी होता है नरक का जीव जैसे यहां पर कोई कुत्ता तड़पता हो, नहीं, कुत्ते की तड़पन नरक के दुख के आगे कुछ भी नहीं है। नरक का दुख उपमा रहित है, भयंकर है, और नरक कौन जाता है इसका भी आचार्य महाराज ने, शुभचंद्र स्वामी ने टीका में 3 गाथाओं द्वारा खुलासा किया, कौन जाता है नरक, हर कोई तो जा नहीं सकता, हर कोई हर जगह नहीं जा सकता, कुछ अपने भाव ऐसे होते हैं जिन भावों के कारण जीवों को अलग अलग गतियां मिलती हैं। आचार्यों ने कहा है कि अपना परिवार, अपना कुटुंब एक पेड़ है, उस पेड़ की टहनियों पर अलग अलग गतियों से आ आ करके जीव रूपी पंछी रिश्तेदार बन करके ठहरते हैं, और जब रात पूरी हो जाती है, रात्रि विश्राम पूरा करके फिर अपने अपने कार्यवश, अपने अपने कर्मानुसार सारे पक्षी एक दिशा में थोड़ी उड़ करके जाते हैं। एक पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे हैं, कोयल, बगुले, तोते, सब एक जगह नहीं जाते, कुछ इस तरफ निकल जाते हैं, कुछ उस तरफ, कुछ और पीछे की तरफ चले जाते हैं, सब अपने अपनी गतियों में, अपने अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। बस इसी प्रकार कुटुंब रूपी वृक्ष से भी ये परिवारजन भी अपने अपने कर्मों के अनुसार कोई मध्यलोक में ही दूसरे स्थान पर चला जाता है, कोई देवगति को प्राप्त कर लेता है, और कोई यदि व्यसनी या हिंसक पंच पापों में रत होगा वो दुर्गति का अधोगति का पात्र भी बन जाता है। कई ऐसे दृष्टांत हैं पुराण पुरुषों के कि एक भाई तो नीचे गया है और एक ऊपर। शांतिनाथ भगवान का चरित्र यदि आपने कभी देखा हो पढ़ा हो तो उसमें हमने एक बार उल्लेख किया था, अपराजित बलभद्र और उनके भाई अर्धचक्री अनंत वीर्य, वो नीचे चले गया और ये अपराजित 16वें स्वर्ग चले गए। फिर इनका कोई मित्र धरणेंद्र था तो उनने धरणेंद्र से कहा कि जाकर उसको कुछ संबोधन दे दो, मेरा भाई ही तो है आखिर, भले पाप कमा कर नरक चला गया लेकिन वो जीव तो मेरे भाई का है, इसलिए उसको संबोधन दे दो ताकि वहाँ उसका सुधार हो जाए, उसकी मति सुधर जाए, मति सुधरेगी तो गति सुधरेगी, जैसी मति वैसी गति। तो धरणेंद्र जाकर के उसको पहली पृथ्वी में संबोधन देता है और वहाँ उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति के उपरांत बस मनुष्य देव इस प्रकार गतियों में कुछ भाव धारण करके फिर वह जीव अंत में गणधर पद को प्राप्त होता है। और ये जो जिन्होंने भेजा था धरणेंद्र को, क्योंकि सिद्धांत के अनुसार 12वें स्वर्ग के ऊपर वाले देव नीचे नरकों में नहीं जाते, 12वें स्वर्ग के जो देव हैं उनमें भी जो शुक्ल लेशा वाले देव हैं वो भी नीचे नहीं जाते, क्योंकि शुक्ल लेशा के साथ अधोलोक में गमन का निषेध है, सर्वार्थ सिद्धि में आता है ये प्रकरण, तो वो नीचे नहीं जाते लेकिन किसी के माध्यम से वहां तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। वैसे मध्यलोक के जो देव हैं, यहाँ के भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देव हैं, ये ऊपर स्वर्गों में नहीं जा सकते, पर किसी के माध्यम से यदि कोई उनका मित्र हो, इंद्र धरणेंद्र की मित्रता हो, तो फिर वो धरणेंद्र को ऊपर ले जा सकता है अपने घुमाने के लिए, बोले कि चलो यार तुम अभी यहीं हो, अपने आप तो तुम आ नहीं सकते, मेरे साथ चलना पड़ेगा ऊपर चलना हो तो। अब ऐसा तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनको यहाँ के भी बहुत से काम रहते ना तो वो क्योंकि सागरों पर्यंत इनकी आयु भी नहीं होती, एक सागर की आयु रहती है, स्थितर असुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्लोपमार्धे। ले जा सकते हैं हाँ, लेकिन ऐसा उद्धरण अभी मिला नहीं, बाकी कोई ऐसा असंभव ही नहीं है। नहीं, ललितांग देव तो दूसरे स्वर्ग में थे, ईशान ऐसा देखना पड़ेगा, आदि पुराण का हमें अभी इस समय ख्याल में नहीं है, आदि पुराण में होगा इसका वर्णन, भवावली है ना आदिनाथ भगवान की। अच्छा ऐसा होगा वो तो, हाँ हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं, तो ऐसी दोस्ती भी अच्छी काम आती है कभी। वो सिद्धांत के अनुसार तो उसमें उल्लेख नहीं है, बाकी अगर अपन नए विवक्षा लगाओ तो जो काम करवाया जाता है उसका श्रेय कराने वाले को दिया जाता है। जैसे अभी यहाँ पर ये जो बिल्डिंग बन रही है, अब वहाँ उस बिल्डिंग में जो लोग बनाने वाले हैं उनके नाम का तो अता पता नहीं रहने वाले आगे, जो ईंटें जमाने वाले, लेकिन जिनने डोनेशंस वगैरह दिए हैं और फिर जिनने ये सब प्लानिंग वगैरह की है, यही रहेगा कि भाई इनने बनवाई है, तो बस वैसे ही रहता है। सीता के जीव ने जाकर के जो भी संबोधन दिया तो वो उस अपेक्षा से भी कथन घटित हो सकता है। और फिर दूसरा विकल्प ऐसा भी हो सकता है कि कोई परंपरा एक भिन्न धारा वाली भी हो सकती हो, क्योंकि जैनाचार्यों की दो परंपराएं हैं जिसमें दो प्रकार के उपदेश उपलब्ध होते हैं, उत्तर प्रतिपत्ति दक्षिण प्रतिपत्ति, एक उत्तर की परंपरा दक्षिण की परंपरा। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो सब मिक्स है समझ लो लेकिन उस समय जब बिल्कुल कोई आवागमन बहुत दुर्लभ था, संपर्क भी कठिन थे, उस समय जमाने की बात है। अभी तो एक सेकंड में सब काम हो जाता है कहीं से कहीं। तो नरक कौन जाता है, इसकी चर्चा में कुछ बातें कह दी थी, जीवों का घात करने वाला, झूठ बोलने वाला, पराया धन हरने वाला, पर स्त्रियों की वांछा करने वाला, और बहुत प्रकार के पापों के साथ परिग्रह इकट्ठा करके उनमें आसक्त रहने वाला, बहु आरंभ परिग्रह। आरंभ में जीवों को पीड़ा तो होती है। आरंभ का मतलब दो प्रकार के आरंभ है, महारंभ और गृहारंभ। महारंभ में क्या होता है, आजीविका के जितने साधन होते हैं उनको महारंभ कहते हैं, असी, मशी, कृषि, वाणिज्य, सेवा, सर्विस वगैरह। तो ये महारंभ हो गया, जो बाहर का जो आउटर डिपार्टमेंट है, और घर के अंदर जो होम डिपार्टमेंट होता है, भोजन पकाना, घर की सफाई रखना, और फिर घर को संवारना, ये सारी जो बातें रहती है वो गृहारंभ के अंतर्गत आ जाती है। और गृहारंभ में पंच सूना का उल्लेख है। पंच सूना यानी पानी भरने की बाल्टी, या फिर कोई भी चीज जिसमें पानी भरा जाए, बुहारी जिससे झाड़ू लगाया जाता है, फिर चूल्हा, और फिर कूटने पीसने के जो दो यंत्र होते हैं वो, कूटने के लिए और पीसने के लिए, पीसने के लिए जो चक्की रहती है, और कूटने के लिए वो मसाला वगैरह जिसमें वो करते हैं ना, उखली, और फिर वो जो भी आप बोलते हैं भाव समझ लो। तो ये जो पांच प्रकार के सूना होते हैं, इनको गृहारंभ में लिया गया, और फिर जो छह प्रकार के आजीविका के साधन हैं वो महारंभ कहलाते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने आठवीं प्रतिमा में महारंभ का निषेध किया, और फिर वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने अपने श्रावकाचार्य में गृहारंभ का भी उन्होंने निषेध किया। जम किम्पि गृहारंभम बहुत होगम वासया विभज्य दी। तो आरंभ और परिग्रह में जो बहुत आसक्त होता है, और फिर विशेषण और क्या दे दिया, बहु, अनेक प्रकार के आरंभ और परिग्रहों में जो आसक्त रहता है वो मर करके नरक जाता है। तो पंच पापों की तीव्रता जीव को केवल एक गति में ले जा सकती है, जिसका नाम है नरक। और कौन जाता है नरक, तो कषायों की अपेक्षा कहा, चंडो, बहुत तीव्र क्रोध करने वाला, फिर माणी, थद्दो, बिल्कुल अकड़ है जिसके अंदर भयंकर तीव्र अभिमान। रावण झुका नहीं अंत तक, लाख समझाया उसको, कई बार राम ने शांति प्रस्ताव भेजे, लेकिन उसको उसने दूसरा अर्थ लगाया। अब लगी डर, क्या युद्ध का समय जैसे जैसे निकट आ रहा है वैसे वैसे शांति प्रस्ताव की बात करने लगे। यार रावण के सामने कौन टिक सकता है, ये उसके अंदर भाव आए। उसको ये कल्पना भी नहीं थी कि सामने जो योद्धा है उसके अंदर इतनी शक्ति है और इतना पुण्य है कि वो मुझ जैसे त्रिखंडाधिपति को भी धराशायी करने में समर्थ है। ये बात उसकी कल्पना में नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी, क्योंकि उसका इतिहास अलग था। रावण कभी हारा नहीं किसी से, इसलिए वो कल्पना ही नहीं आ सकती थी ना हार की, कभी हारा नहीं था। और उसको पता नहीं था कि यहां राम और लक्ष्मण भी किसी से हारे हुए लोग नहीं है। फिर अंत में जो हुआ सो हुआ। तो ऐसे तीव्र मान को प्राप्त होने वाला जीव, मायावी, छल कपट करने वाला, निष्ठुर यानी निर्दय, दया नहीं आती उसको, कितना भी लाख मनाओ दया नहीं आती। फिर खर, खर का अर्थ जैसे कल चर्चा कर रहे थे ना, खरा खरा बोल देता है बिल्कुल। वो खरा खरा का मतलब बिल्कुल दो टूक बोल देता, मैंने किसको कितनी पीड़ा होगी इसकी चिंता नहीं करता, एकदम बोल देना, कुछ भी बोल देना, और किसी भी भाषा में बोल देना, कैसे भी शब्दों का इस्तेमाल कर देना, और पापों का मतलब इन पंच पापों में रत रहने वाला। विष्णु चुगलखोर, देखिए चुगली करना भी नरक का कारण बता रहे हैं, ये याद रखने की चीज है। चुगलखोरी कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, उसमें बहुत तीव्र कषाय होती होगी, तब तो जाकर के यहां नरक की बात चल रही है। चुगली करना, संघशील परिग्रह इकट्ठा करने में जो आदि है, जिसको आदत पड़ गई, साधुओं का निंदक, अधम नीच प्रवृत्ति वाला, आलप पाल पसंगी, संलेखना के प्रकरण में कोई ऐसा दोष बताया है, वैसा दोष करने वाला भी नीचे जाता है। दुट्ठो, बुद्धि है दुट्ठो, बुद्धि से जो दुष्ट है, मतलब एकदम तुरंत कहीं से कहीं विचार जाते हैं, कभी मर्डर के विचार आ जाए, कभी सुसाइड के विचार आ जाए, ये बुद्धि की दुष्टता कहलाती है। कभी कोई ऐसा समाचार सुन लिया उसने न्यूज में, या फिर गुजरात समाचार में पढ़ लिया कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऐसा ऐसा कुछ बोल दिया, तो उसको लगता है कि क्या भारत कब तक सब्र करेगा, खत्म कर देना चाहिए, पाकिस्तान कितना है, छोटा सा तो है। ये जो है बुद्धि की दुष्टता है, ऐसी हिंसक बात विचारों में आना, क्या होता है कि अपन एक की त्रुटि के कारण सबका सफाया नहीं कर सकते, क्योंकि सभी प्राणी एक श्रेणी के नहीं हो सकते, कई अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो फिर आप एक की बुराई को लेकर सबके साथ दुश्मनी करो, ये बात नितांत अनुचित है। जैसे उदाहरण के लिए किसी ने कोई कर्कश बात कह दी, आप उसके पूरे कुटुंब के और उसके पूरे वंश के दुश्मन बन जाओ, ये कहां का न्याय है? क्या उसका कुटुंब अपराधी है? क्या उसके बच्चों ने आपका कुछ बिगाड़ा है? उसके रिश्तेदारों ने आपको कुछ क्षति पहुंचाई है? फिर जिसने बोला है उसको छोड़कर बाकी सबको क्यों दंड देना चाहते हो? उनको क्यों तकलीफ देना चाहते हो? अब उसका उत्तर आप ये देंगे कि उनको तकलीफ देने से इसको तकलीफ होगी, इसको तकलीफ होगी, माना, लेकिन उनको तो फोकट की तकलीफ देने लगे ना। तो कभी भी कोई भी ऐसा प्रसंग आए जीवन में कि जहां किसी एक के कारण अपने को पीड़ा पहुंच रही है, तो फिर उसके संबंधी जनों के बारे में कभी भी अनिष्ट विचार नहीं करना, क्योंकि वो दुर्गति का कारण है। एक के साथ कभी कोई विवाद होता है तो उसका विवाद आप उसके साथ निपटाइए, बाकी सबको उसमें मत लपेटिए, क्योंकि फिर वो इतनी बढ़ जाती है बात कि फिर उसका अंत नहीं होता, वो फिर LOC बन जाती है। क्या फिर वो मिलना हो नहीं सकता, फिर एकता बन नहीं सकती। कितने ऐसे कुटुंब परिवार है जो बिल्कुल टूट चुके हैं जर्रा सी बात के लिए। अब किसी ने कुछ बोल दिया, उस बात को बिल्कुल तूल दे दिया, और विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ केसेस तो 70-70 साल तक चले हैं एक जरा सी बात को लेकर के, कोई दम नहीं उसमें। एक बार आप मुस्कुराए, देखो कई बार झगड़े कितनी छोटी सी बात पर से हो जाते हैं। जैसे किसी के घर आप पहुंचे और वो उसने चाय बुलवाई, अब चाय जो ऐसे ट्रे में लेकर के आई उसकी श्रीमती जी, उसके चेहरे में प्रसन्नता नहीं थी, उसका चेहरा एकदम न्यूट्रल था, तो उसके न्यूट्रल चेहरे को देख करके व्यक्ति टेंशन में आ जाता है कि मेरे इतने दोस्त आए थे, इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग आए थे, और तुम ऐसा लटका करके मुंह चली आई, बोले। तो देखो कितनी जरा सी बात है, बस उसके अपराध क्या है, चेहरे पर स्माइल नहीं है, मुस्कान नहीं है, और चेहरे पर मुस्कान न होने का दंड कितना बड़ा है। यहां तक की स्थिति हो जाती है कि कई बार तलाक हो जाता है। बात जब बढ़ती है ना आगे, लौटने का तो नाम नहीं है, क्योंकि कोई लौटाने वाला भी है नहीं, रिवर्स गियर कौन लगाए वहां बीच में तो वो स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि फिर पूरा भविष्य खराब हो जाता है। तो ऐसी तीव्र कषाय नहीं करना कि जिसका परिणाम दुर्गति हो। अभी तो आपको मजा आएगा क्योंकि हार जीत का एक अलग मजा है, किसी को हराने का और खुद जीतने का एक बिल्कुल निराला मजा है। इसीलिए तो जुआरी लोग कभी जुआ नहीं छोड़ते। युधिष्ठिर जैसे धर्मराज भी सब इशारा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, इतने बुद्धिमान, इतने विद्वान, इतने नीतिक जी, सब कुछ समझने वाले, फिर भी इस व्यसन में कहां फंस रहे हैं आप, शकुनी मामा के चक्कर में। अरे नहीं, बस एक एक और कर लें, एक और कर लें, एक और करते 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 सब कुछ गंवा दिया, क्या बचा फिर? बस वो एक ऐसी कषाय हो जाती है कि उसमें फिर व्यक्ति उलझता ही चला जाता है और उसके कारण फिर कितने जीवों का जीवन खराब हो जाता है। इसलिए जहां तक बने, वो हमने एक दिन कहा था आपसे कि कोई भी कषाय को दूसरे दिन तक नहीं चलाओ। सबसे बेस्ट तरीका ये है, आज एक दिन हो गई कषाय, अगले दिन वो कषाय नहीं चलनी चाहिए, बस फिर वो बात आगे नहीं बढ़ सकती। आज की कषाय आज समाप्त कर दो। ऐसे होली बाइबल जो पुरानी बाइबल है उसमें भी ये लिखा है कि दिन ढलते तक गुस्से को छोड़ दो। उसमें क्रोध के बारे में लिखा है, अपन कोई भी दूसरी कषाय हो सबको ले लो, वो क्रोध को उपलक्षण मान लो। कुछ बातें बड़ी सुंदर है सभी ग्रंथों में, और इसीलिए आचार्य समन्तभद्र स्वामी ने युक्तेन शासन में एक काव्य लिखा है, स्फुरन्ति याः काश्चन सूक्ति संपदः परतंत्र युक्तिषु तवैव ताः पूर्व महारणबोधिताः जगत प्रमाणम जिन वाक्य विप्रुषः। बड़ी सुंदर बात लिखी, अन्य मतों में अन्य शास्त्रों में भी कुछ बातें तो ऐसी दिल को छूने वाली मिल जाती है, क्या बात है। तो समन्तभद्र स्वामी कहते हैं कि भगवान वो आपके 14 पूर्व हैं, जैन आगम में 12 अंगों के अंतर्गत 12वें अंग में 14 पूर्वों का एक प्रकरण आता है। उन पूर्वों से, वो पूर्व बहुत विशाल है, समुद्र के समान है, तो उस समुद्र में से कुछ अमृत के कण ऐसे इधर उधर छिटक गए हैं, बोले वो छींटे इधर उधर चले गए हैं, तो इसलिए आज वो यहाँ अपने पास तो उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनके ग्रंथों में वो अमृत के कण अभी भी विद्यमान है। वो जिनेंद्र भगवान की वाणी के ही अमृत कण है, लेकिन उसको पहचानने वाला कोई बड़ा गहन अध्येता ही हो सकता है, हर कोई नहीं पहचान सकता, नहीं तो कोई दूसरी बात आप पसंद कर लो तो फिर काम बिगड़ जाए। एक बार एक जैनी भाई चले गए जबलपुर से किसी के पास कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं हो रहा है, क्या करना। तब फिर उसने बोला कि तुम एक काम करो कि फलाने वार पर इस नक्षत्र के समय और इतने समय पर बलि चढ़ाओ। बलि चढ़ाने के लिए बोला उसको। अब क्या है कि पुत्र का लोभ भी बहुत भयंकर खतरनाक होता है, वो अपने पुण्य पाप को भूल कर फिर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, अजैन विधियों से भी, और फिर उन विधियों में कई बार ऐसे पाप होते हैं कि जिसमें नरक के सिवाय कोई दूसरी गति मिल नहीं सकती, लेकिन संयोग की बात ऐसी बन गई कि वो हमारे पास आ गया। और फिर बोला कि ऐसा बोल रहा है वो, तो हमने बोला कि आपका क्या विचार है। तब फिर वो समझ गया कि महाराज जी पकड़ लेंगे इसमें। बोले कि नहीं महाराज, मेरा बिल्कुल विचार नहीं है। तो फिर हमने बोला कि बस भूल जाओ उस बात को, और जो होगा अपने पुण्य से होगा। तुम इन गलत चक्करों में मत पड़ो, और सिर्फ जिनेंद्र भगवान की आराधना करो, तुम कुछ भी असंभव नहीं है। अब भाग्य संयोग की बात, उसका बेटा हो गया बाद में, अब वो बेटा किस कारण से हुआ ये तो एक अलग बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें भ्रम भी होता है लोगों को, कभी ऐसा लगता है कि इनके आशीर्वाद से ऐसा हो गया। अब बात ऐसी रहती है कि साधु कभी भी आशीर्वाद देते हैं तो साधु का आशीर्वाद आपकी शांति के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए, धर्म ध्यान के लिए और मुक्ति मार्ग पर प्रगति के लिए होगा, लेकिन संसार में डूबने का आशीर्वाद साधु देंगे क्या? अगर देंगे तो वो खुद भी डूब जाएंगे बेचारे। साधु अगर किसी को डुबाएंगे तो फिर डुबाने वाले को भी गीला होना पड़ता है, उनको भी जाना पड़ेगा। पर ऐसी